समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम परिक्रमा को। आज ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ओणम के साथ आपके जीवन में नई रोशनी आए, उन्नति के रास्ते खुलें और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। परिक्रमा कार्यक्रम के श्रोताओं को ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज के अंक में भी हम आपको देंगे देश दुनिया के समाचार, जाएंगे देश के कोनों में और अपने संवाददाताओं के जरिए जानेंगे वहां की हलचल। आज परिक्रमा में आपके साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शिफाली।
Hi, Sir Firozi, and a very good afternoon to all our dear listeners. I hope you are enjoying your Sunday afternoon. और जैसा कि Sir Firozi ने कहा, आज है ओणम, तिरु ओणम, और आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पर आज Sir Firozi एक और दिन है जो आज के डे को खास बनाता है, which is Engineers Day. तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और नई नई चीजें क्रिएट करते हैं, बल्कि हमारे सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। सो विशिंग ऑल आवर इंजीनियर्स आउट देयर अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम फॉर टुडे, परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi flags off 6 Vande Bharat trains from Ranchi through video conferencing. Also lays foundation stone and dedicates various railway projects worth 660 crore rupees in Jharkhand.
प्रधानमंत्री ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए पहले किस्त जारी की। डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ रुपए भेजे गए।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announces to resign from CM's post in 2 days.
मेरठ में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या 10 हुई, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
President, Vice President and Prime Minister greet people on the occasion of Onam.
और मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा और बाढ़ आने की चेतावनी जारी की।
And dear listeners, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we will talk about the Engineers Day and Onam. So dear listeners, today is a truly special day, as we have talked about it, because we come together to celebrate the brilliant minds who design, innovate and shape the world around us. Yes, it's Engineers Day, which is a day dedicated to recognizing the remarkable contributions of engineers whose work ensures that our world functions smoothly. From the roads we travel to the smartphones we rely so much on, engineers are the driving force behind the systems and technologies that make our lives easier and more connected. So let's take a moment to honor these incredible problem solvers and visionaries who are building a brighter future for all of us.
और इस साल इंजीनियर दिवस की थीम है एक सतत विश्व के लिए इंजीनियरिंग समाधान। आज के मौके पर अगले कुछ वक्त तक हम आपके साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए बेहद मेहनत करने वाले इंजीनियर्स की जिंदगी से जुड़ी प्रेरक कहानियां साझा करेंगे।
जी सर फिरोजी, और हम थोड़ी और जानकारी देते हैं हमारे लिसनर्स को। सितंबर 15th मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, अ पायनियरिंग सिविल इंजीनियर एंड अ भारत रत्न रेसिपिएंट। सिंस 1968 वी हैव डेडिकेटेड दिस डे टू रिकॉग्नाइज द रोल इंजीनियर्स प्ले इन शेपिंग आवर नेशन, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। Sir Vishveshwaraya, known for his pioneering work in irrigation, flood control and water resource management, symbolizes the profound impact engineers have on society. Let's listen to our Honorable Prime Minister extending wishes on Engineers Day.
आज हम इंजीनियर दिवस मना रहे हैं। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी की जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित।
कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित। देश के उस हिस्से में तो वो पूजनीय है ही, बाकी पूरा देश भी उन्हें बहुत ही सम्मान और आत्मीयता के साथ याद करता है।
हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर, भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
बेहतरीन इंजीनियरिंग के पर्यायवाची माने जाने वाले सर विश्वेश्वरैया ने कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक चमत्कार जिसने भारत के सिंचाई क्षेत्र में बदलाव ला दिया। उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा संरचनाओं के निर्माण से परे थी, इसने लोगों के जीवन और उद्योगों में परिवर्तन किया। सर विश्वेश्वरैया को यकीन था कि इंजीनियरिंग जीवन में बदलाव ला सकती है और आज भी हमें उनके कहे ये शब्द याद हैं। उन्होंने कहा था, अगर उच्च ज्ञान, कौशल, क्षमता और महत्वाकांक्षा के साथ कोई काम किया जाए तो ये उसी के अनुरूप उच्च पुरस्कार देता है।
बिल्कुल सर फिरोजी, और हमें भूलना नहीं चाहिए दैट इंजीनियर्स हैव द पावर टू शेप द वर्ल्ड वी लिव इन। एंड दिस ईयर्स थीम सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड रिमाइंड्स अस दैट आवर प्लैनेट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबल इनोवेशन। सो हियर्स टू द इंजीनियर्स वर्किंग हार्ड टू मेक दैट विजन अ रियलिटी। And now we shall tell our listeners about Onam that's being celebrated today, a festival of unity, tradition and joy.
Uttanadan punjayile
jai nagarai jai do
kochu venne kuilale
tattali jai jai
kottu venam kulal venam kurava venam
Well, Sir Firozi, I already have goosebumps now. That music was really reverberating through my veins, I would say. So, dear listeners, we are taking a delightful journey through one of Kerala's most vibrant and heartwarming celebrations, Onam, a festival that transcends religious boundaries and brings everyone together. It's a time when tradition meets fun and when the spirit of unity is celebrated with an array of exciting activities and heartwarming customs. In every home, the crisp green banana leaves are spread, ready to host a lavish traditional meal, the iconic Onam Sadya. Served with love and precision, this meal boasts over 24 dishes, from the creamy avial to the tangy rasam and the sweet payasam. Sir Firozi, ye sare dishes ka naam leke to already mere muh mein paani aa chuka hai.
Ji Shifali, aur jab koi tyohar manaya jata hai to us din ek khas tarah ka khana banaya jata hai aur ek khas tarah ki dress pehni jati hai जो उस त्योहार को अपने आप में स्पेशल बना देता है बाकी अलग दिनों से।
बिल्कुल, उसी की तो एक्साइटमेंट रहती है।
जी, और इसी तरह ओणम के दिन भी जैसा आपने बताया एक खास तरह का मील बनाया जाता है जिसे ओणम सद्या कहा जाता है। इसमें हर तरह के टेस्ट का खाना होता है, यानी कि मीठा, नमकीन और खट्टी चीजें। और जब लोग सद्या बैठकर एक साथ बैठकर खाते हैं तब पता चलता है कि उनके बीच कोई भी अंतर नहीं है।
जी,
तो जिस तरह कहा जाता है कि ओणम वाकई एकता का प्रतीक है।
बिल्कुल,
और वहीं आज के दिन लोग खास तरह के कपड़े पहनते हैं। इनमें मंडू और कासवू साड़ी शामिल होती है। मंडू एक तरह की धोती होती है। और अब बात करें कि ओणम कैसे मनाया जाता है, तो ओणम 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इन 10 दिनों में विभिन्न प्रकार की पूजा की जाती है, जैसे एथम, चिथिरा, शोधी, विसाकम, अनिजाम, थिक्रेता, मूलम, पुरादम, उथिरदम और आखिरी दिन होती है थिरुवोणम पूजा। आज के दिन लोग अपने घरों में फूलों से बने रंग बिरंगे कालीन बिछाते हैं जिन्हें पूकलम कहा जाता है। इसके अलावा लोग एक दूसरे को नए कपड़े गिफ्ट करते हैं जिन्हें ओनाकोड़ी के नाम से जाना जाता है, और लोग घरों में उंजल नाम के झूलों पर भी झूलते हैं।
जी, also the Onam competitions with neighbors such as tug of war and coconut climbing are superbly interesting. It's amazing to see how these traditions are still alive even today.
Jee.
Onam is not just about delicious food but also a celebration of fun and friendly competition. Across Kerala, local clubs and resident associations have set up traditional games that harken back to simpler times. You can feel the energy on the streets itself. And as we wrap up today's program, we hope we have transported you to the heart of Kerala's Onam celebrations.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है।
Sustainable Lifestyle Hands-on Workshop on SUP Alternatives for 30 Schools was held at Jorethang. Let's hear more from our correspondent.
Forest and Environment Department under the Environment Education Program funded by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India conducted a two-day hands-on skilled workshop on alternative to single-use plastic for 150 students and teachers from 30 schools of Namchi, Gijing and Soaring District at Panchasil Bhavan Jorethang on September 13 and 14. The workshop with phone learning hands-on activity focused on zero waste initiative to promote circular economy. The resource person for the workshop were from Sikkim Bluezoom, a voluntary organization based in Gangtok, and officers from State Inves EEP Shell of the department. The students and teachers participated the event with great zeal, and best school team were also rewarded with handmade bamboo craft as prize. The workshop also sensitized the participants on individual role towards climate action as a part of upcoming World Ozone Day, 16th September, wherein an interactive quiz session were held towards the end with prize to the winners. This is Ramdulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
और गंगटोक से आपको लेकर चल रहे हैं देहरादून। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल स्तर पर बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति देना हो या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना हो, उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में खेलों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
विभिन्न खेलों में उत्तराखंड से अधिक खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित करने और उनकी खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना चला रही है। इस योजना के तहत हर जिले में खिलाड़ियों का उनकी दक्षता के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु में 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाता है। चयन होने वाले खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इस बीच क्रिकेट में राज्य के उभरते खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए देहरादून में कल से उत्तराखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत भी होने जा रही है। इस लीग में पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण भी दे रही है। इससे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। गौरतलब है उत्तराखंड में इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां जारी हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
The Indian Institute of Technology, Madras, has established a research group that is targeting over 1 gigaton in cumulative CO2 emission reduction by 2035. The key objective of this group is called the Energy Consortium. The group will develop technology sandboxes to de-risking research and development in the energy sector, which could be capital intensive. More from our correspondent.
The research group will become a pioneer in the many initiatives of reduction of carbon emission in the country. It aims to achieve the savings by developing new and advanced technology and advising the industry on energy efficiency measures. It comprises 8 centers of excellence and has on board 10 major multinational and Indian companies as partners. The consortium is working with 20 universities and research institute partners, including international institutes. The industries that are collaborating include Shell, Baker Hughes, Cummins, FL Smith, Aditya Birla, Chevron, Infosys, Technip Energy, CPCL and NLC India Limited. Joy, Akashwani, reporting for Parikrama from Chennai.
And Sarfarozi, here's the news for all culture enthusiasts. A celebration of the spirit of tribal culture, cuisine, commerce and craftsmanship, Adi Bazaar, began in New Delhi today. The 5-day bazaar, organized by the Ministry of Tribal Affairs, features an exhibition cum sale of tribal handicrafts, art, paintings, fabric and jewellery from different parts of the country. More from our correspondent.
The Adi Bazaar is an enchanting platform that brings unique tribal products to the spotlight. The bazaar is hosting stalls from 36 artisans from around 12 states with products ranging from wild honey to handmade soap, from hand-woven dolls to artisan jewelry. The Tribal Cooperative Marketing Federation of India, TRIFED, said that the bazaar will give a platform to bring unique products from all over India at one place. Talking to Akashwani News, Jimli Sarania, a stall owner at the Adi Bazaar from Assam, said that all products presented by her are organic and locally sourced, empowering the local economy.
नमस्कार, मेरा नाम जिल्दर सरनिया है और मैं असम से हूँ और हम यहाँ पे ट्राइफेड के साथ लगे हुए हैं। हम लोग फॉरेस्ट के क्लस्टर ग्रुप है, उसमें हम ट्राइब्स लोग कलेक्टिवली हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे प्रोड्यूस है वो सब हम फार्मर से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करके जगह जगह पर अवेयरनेस दे रहे हैं।
गफूर मोहम्मद, अ लोकल हैंडमेड सोप एंड शैम्पू मैन्युफैक्चरर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, टोल्ड आकाशवाणी दैट हिज प्रोडक्ट्स आर डिवॉइड ऑफ एनी हार्श केमिकल्स एंड मेड विद ट्रेडिशनल मेथड्स।
हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम गफूर मोहम्मद है, मैं चंबा हिमाचल से आया हूँ और मैं यहाँ पे अलग अलग तरह की साबुने लेके आया हूँ और शैम्पू है और हेयर ऑयल है।
नमस्कार, मेरा नाम मुमताज है, मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं हैंडमेड सोप्स और शैम्पू ऑयल्स वगैरह जो कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस से बनाई जाती है उनको लेके आई हूँ। इनमें जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं हमने, जो चंबा की लोकल जड़ी बूटियाँ हैं जो फेस के लिए, बालों के लिए बहुत बेस्ट होती है।
The Adi Bazaar will remain open till the 19th of this month with free entry. People can visit the bazaar at Aga Khan Hall in Mandi House, New Delhi between 11 AM to 8 PM. Adarsh for Parikrama, Akashvani News, Delhi.
And now, listeners, we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On this day in 1891, a revolutionary who gave us our salutation, Jai Hind, and fought for India's independence from the foreign land, was born. The name of this legendary freedom fighter is Chempakraman Pillai, also called Jai Hind Pillai.
Thirsting for freedom of the country, Pillai wanted to create an anti-British army and redeem India from the foreign rule. Chempakraman Pillai was born in Thiruvananthapuram to Tamil parents. It is said that Raman Pillai rallied against the British and shouted out Jai Hind or Jai Hindustan Ki in the school campus.
Raman Pillai continued his education in Austria and went on to complete his diploma in engineering. He also graduated in public governance and economics and had a grasp over 12 languages.
In 1914, when the First World War broke out, overseas Indian revolutionaries attempted to seize the opportunity to enlist German support for India's fight for freedom. Pillai was one of them.
Ye jo desh hai tera, swadesh hai tera, tujhe hai pukara.
The Indian revolutionaries in Europe contacted the German embassy in Zurich. In September 1914, the International Pro-India Committee was formed with Pillai as the president and Zurich as the headquarters. From Zurich, Pillai ran the German-English monthly Pro-India. The magazine put forward the Indian view of the world to the German people.
In October 1914, Pillai founded the Berlin Committee in support of the Indian cause. The following year, the International Pro-India Committee and the Berlin Committee combined to form the Indian Independence Committee. A series of plans were put together between 1914 and 1917 to form an international front against the British Raj.
The Indian revolutionaries even went so far as to form a provisional government of India in Kabul in 1915 with Chempakraman Pillai as the foreign minister. The plan was to bring Turkish and German soldiers to Afghanistan and assist Kabul in launching a war against the Raj.
The attack on the northwest frontier would be reinforced by a mutiny in the Indian army and a popular upsurge against the British rule. But the plan failed and led to a severe backlash from the British.
After the World War I ended, Pillai stayed on in Europe and continued his nationalist work. He died in Berlin in 1934 with a last wish that his ashes be carried on a ship with tricolour flying on it. Pillai's wife Lakshmibai returned to India with his ashes.
She travelled with them from Bombay to Thiruvananthapuram aboard INS Delhi some years after the independence and immersed them in the river Karmana.
Also on this day in the year 1940, one of the most important resistance movements against the British rule in Malabar took place at Kannur district in Kerala. The Provincial Congress Committee gave a call to the people of Malabar to observe 15 September as Anti-Imperialist Day.
There were meetings and demonstrations all over Malabar against the imperialism. Violent clashes took place between the people and the police at several places. Two young men were killed in a clash between a mob and a police party at Murara.
In connection with this incident, K.P.R. Gopalan, a prominent communist, was arrested on a charge of murder and later sentenced to death. But, owing to the intervention of political leaders, including Mahatma Gandhi, the death penalty was not carried out.
और अब बात खेलों की. भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है. बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल नीरज ने 87.86 मीटर तक भाला फेंका. नीरज केवल 1 सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए. प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता एंडरसन पीटर्स ने जीता. जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे. नीरज डायमंड लीग में लगातार दूसरी बार उपविजेता बने हैं.
And in the Chess Olympiad 2024, the Indian team in both the open and women's category achieved an impressive win in the fourth round held in Budapest yesterday. The women's team will face Kazakhstan in the fifth round today, while in the open section, Indian team will face Azerbaijan.
और अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए. शिफाली, आज सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं?
जी सरफरोजी, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ रिचर्ड राइट, एन इंग्लिश कीबोर्डिस्ट एंड सॉन्ग राइटर हु को फाउंडेड द प्रोग्रेसिव रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड. Wright's jazz influences and distinctive keyboard playing were an important part of the Pink Floyd sounds. He sang regularly in the band and took lead vocals on songs such as Remember a Day, Wearing the Inside Out and Time. So let's listen to Time.
Picking away the moments that make up a dull day.
आज प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है. शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे हैं जिनमें पंडित मुशाए, बैंकुठेर बिल, मेज दीदी आदि शामिल हैं. शरद चंद्र के लिखे उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित फिल्म बनी थी. उसके बाद देवदास, उनके उपन्यास देवदास को आधार बनाकर देवदास फिल्म का निर्माण 3 बार किया गया. हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसी फिल्म का ये डायलॉग.
कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता.
कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है. मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना. तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूँ, बस देखता रहता हूँ तुम्हारे मुंह की तरफ. तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता.
जी एंड सरफिरोजी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को जो चीज खास बनाती थी वो थी उनकी कीन पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ग्रेट सिंपथी फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एन इजी एंड नेचुरल राइटिंग स्टाइल.
जी.
Also, moving on, listeners, today is the death anniversary of Oliver Wallace, an English composer and conductor. He was especially known for his film music, compositions, which were written for many animation, documentary and feature films from Walt Disney Studios. And he started writing and orchestrating the score for the Disney creation Dumbo, for which he, together with Frank Churchill, won his first and only Oscar. So what you're listening to in the background is a title track from Dumbo.
चांदनी की पांच परतें, हर परत अज्ञात है, एक जल में, एक थल में, एक नीलाकाश में, एक आंखों में तुम्हारे झिलमिलाती, एक मेरे बन रहे विश्वास में। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी जरा सी बात है, चांदनी की पांच परतें, हर परत अज्ञात है। ये रचना निकली है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कलम से, जिनकी आज जयंती है। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। ये आकाशवाणी में सहायक निर्माता रहे। अपने एक लेख चरखे, चर्चे और चरखे के लिए इन्हें खास लोकप्रियता मिली। सन 1983 में कविता संग्रह खूटियों पर टंगे लोक के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
And dear listeners, today is the birth anniversary of Agatha Christie, an English writer known for her detective novels and short story collections, particularly those revolving around fictional detectives Hercule Poirot and Miss Marple. She also wrote the world's longest running play, the murder mystery The Mousetrap, which has been performed in the West End of London since 1952. A writer during the golden age of detective fiction, Christie has been called the Queen of Crime or the Queen of Mystery. Guinness World Records lists Christie as the best-selling fiction writer of all time. So all our readers, I'm sure it's a happy day for you and you can go and binge read your Christie collections. Also, dear listeners, today is the birth anniversary of Subedar and Honorary Captain Karam Singh, PVC MM, an Indian soldier and recipient of the Paramveer Chakra, PVC, India's highest award for gallantry. Singh joined the army in 1941 and took part in the Burma campaign of World War II, receiving the military medal for his actions during the Battle of the Admin Box in 1944. He also fought in the Indo-Pakistan War of 1947 and was awarded the PVC for his role in saving a forward post at Richmar Gully, south of Tetwal.
आज ही जयंती है खुमार बाराबंकी की। ये भारतीय शायर थे। इनका असली नाम मोहम्मद हैदर खान था, लेकिन ये मशहूर हुए खुमार बाराबंकी या खुमार साहब के नाम से। शबेताब, हदीसे दीगर, आतिशेतर और रक से मचा इनकी मुख्य रचनाएं हैं।
And listeners, जैसा कि आज हमने बात की, आज इंजीनियर्स डे है and it is celebrated on the birth anniversary of Sir Mokshagundam Vishveshwaraya, so let's talk about him as well. He is often referred to by his initials MV and was an Indian civil engineer, administrator and statesman who served as the 19th Dewan of Mysore. Vishveshwaraya is regarded in India as one of the foremost civil engineers whose birthday, 15th September, is celebrated every year as Engineers Day in India, Sri Lanka and Tanzania. He is also often regarded as the maker of modern Mysore. Vishveshwaraya worked as a civil engineer for the government of British India and later as Prime Minister of the Kingdom of Mysore. For his services to the Kingdom of Mysore and the Republic of India, he was awarded the Bharat Ratna by Government of India in 1955.
आज राजकुमार वर्मा जी की जयंती है। ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। नाटककार और कवि के साथ होने के साथ साथ इन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: अतिरिक्त छाया, टीला, कच्चा धागा, पूर्ति, बहुजी, प्यार के भूखे और टूटे सपने। आज ही जोशन चिनप्पा का जन्मदिन है। ये भारत की महिला स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। 2003 में अंडर 19 की कैटेगरी में ब्रिटिश स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। इन्हें 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया है। और श्रोताओं, अब इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शेफाली सिंह को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।